समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जी हां, अक्सर हम अपनी परेशानियों से खुद को इतना कमजोर मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, पर हम भूल जाते हैं कि इन्हीं दुश्वारियों से ही हम सीखते हैं कि जिंदगी जीनी कैसे है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर उन मुश्किलों के साथ कई मौके भी आते हैं। उस मुश्किल भरे रास्तों पर अनगिनत सीखें भी मिलती हैं, और उन्हीं सीखों से हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, कुछ ख्वाब बुन सकते हैं, कुछ उम्मीदें जगा सकते हैं, और हर दिन कुछ नया, बहुत कुछ बेहतर करने की आशा लिए अपनी उलझनों का डटकर सामना कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग आकर्षिता। हेलो देयर लिसनर्स, रेन और शाइन, वी आर हियर टू एंटरटेन यू विद अनदर ब्रांड न्यू सेशन अबाउट सवेरे। सो आकर्षिता, लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देशभर में ठोस कदम उठाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधी निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि संसद ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के कई मामले पहले भी सामने आए, और सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सही अवसर प्रदान किए जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सब में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 10 साल में देश 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देश ने महामारी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की संकल्प ने आज भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र को रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार सहित हर क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार में स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है, और पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया गया है।
The special PMLA court at Ranchi in Jharkhand extended the judicial custody of former Chief Minister Hemant Soren by 14 days. Jharkhand Mukti Morcha leader Soren is lodged in Birsa Munda's central jail in Ranchi on charges of money laundering through land scheme. Hemant Soren, along with 11 other accused persons, were produced before the special court through video conferencing yesterday. The next court appearance of all the accused will be on 11th of July. Charge sheet has already been filed against them in the court. The former Chief Minister was arrested by the Enforcement Directorate on 31st of January after several hours of interrogation.
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कल विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया। ये हैं एमएसएमई टीम योजना और यशस्विनी अभियान। एमएसएमई टीम योजना का उद्देश्य 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है। यशस्विनी अभियान में महिलाओं के स्वामित्व वाले अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए जन जागरूकता, आवश्यक समर्थन और सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में श्री मांझी ने कहा कि तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य में एमएसएमई को डिजिटल और प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के मौजूदा सुधारों के तहत एमएसएमई क्षेत्र में कानूनी सुधार बहुपक्षीय ताकत के रूप में काम करेंगे। श्री मांझी ने मीडिया को बताया कि आर्थिक रूप से अत्यधिक वंचित पृष्ठभूमि वाले लोगों का विकास उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से ही होगा।
The Reserve Bank of India, in its latest financial stability report, stated that the Indian economy and the financial system remains robust and resilient, anchored by macroeconomic and financial stability. The report that came out yesterday further highlighted that gross non-performing assets (GNPA) ratio of scheduled commercial banks fell to a multi-year low of 2.8% and the net non-performing assets (NNPA) ratio to 0.6% at end March 2024. The Financial Stability Report also observes that the global economy is facing heightened risks from prolonged geopolitical tensions, elevated public debt, and the slow progress in the last mile of disinflation. Despite these challenges, the global financial system has remained resilient and the financial conditions stable.
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी एट यूएन परियोजना के लिए 11,60,000 डॉलर का योगदान दिया है। भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी डीएफएआर रविन्द्र ने आज संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग डीजीसी के समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक इयान फिलिप्स को सहयोग राशि का चेक सौंपा। भारत ने वर्ष 2018 से डीजीसी के साथ साझेदारी की है, जब संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को हिंदी भाषा में बढ़ाने और दुनिया भर के लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी एट यूएन परियोजना शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन से संबंधित मामलों पर हर सप्ताह एक ऑडियो हिंदी समाचार बुलेटिन तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र एक समाचार वेबसाइट के अलावा हिंदी में एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट भी चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक नीति के तहत बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, लेकिन मुख्य बाधा वित्त है। यही कारण है कि भारत हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भुगतान कर रहा है।
The delay in the return of astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore is looking to extend further, as reports are suggesting that Starliner's latest targeted return date is 6th of July. The mission, which was originally planned for 8 days, would now last a month. Moreover, media reports have made serious allegations that NASA and Boeing were aware of a helium leak on the Starliner spacecraft prior to its launch on 5th of June. However, despite this, they proceeded with the launch. The return of Indian origin astronaut Sunita Williams was earlier scheduled on 13th of June, then on 26th June, but the return got cancelled every time. No new date for her return has been disclosed by NASA.
भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। कल रात गुयाना में हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में सर्वाधिक 57 रन बनाए। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट लिए, वहीं रीस टॉपले, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और आदिल राशिद के खाते में एक एक विकेट आया। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 16 ओवर 4 गेंदों में केवल 103 रनों पर ढेर हो गई। हैरी ब्रुक ने अपनी टीम के लिए 19 गेंदों पर सर्वाधिक 25 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट अपने नाम किए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब फाइनल में भारतीय टीम कल बारबाडोस में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है।
Indian track athlete Kiran Pahal has qualified for the Paris Olympics to be held next month in the women's 400 meters event. The 24-year-old from Haryana clocked 50.92 seconds in the semifinals at the ongoing National Interstate Senior Athletics Championships in Panchkula yesterday. The Olympic qualification mark was set at 50.95 seconds.
और अब रुख करते हैं चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद की से जुड़ी खबरों का।
Starting with Metro News. Starting with news from Chennai, an international airport with the capacity to handle 30 million passengers per year would be built in Hosur in Krishnagiri district, Tamil Nadu. The airport would be spread over an area of 2,000 acres, he said, while making the announcement under Rule 110. So Hosur is a fast-developing hub for electronics and electronic vehicles, bringing in a lot of investments. With Hosur's excellent weather, the new airport would foster a twin city ecosystem with Bengaluru, propelling growth in both Tamil Nadu and Karnataka. Tamil Nadu government has announced that a land use information system to create research models based on 9 important factors, including climate change, water resources, urban and developing urban areas, land use and coastal resources, would be established. The research models would be used for real-time monitoring of changes in the state's land usage. This in turn would help formulate policies and schemes based on findings and to take scheme-based decisions. He said the State Planning Commission would launch a 6-month public management certificate course through reputed institutions such as Madras Institute of Development Studies, Madras School of Economics, IIT, at an estimated cost of rupees 1 crore. Remote session and drone technology would be used to capture crop statistics as an innovative program at district level. Getting to some Bengaluru news, the Forest, Environment and Ecology Minister in Karnataka, Ishwar Khandre, has inaugurated a leopard safari at Banerghatta Biological Park near Bengaluru. The safari is developed in 20 acres at a cost of 4.5 crore rupees. It is said to be India's largest and third leopard safari. It is home to 20 leopards, and after this, the visitors now we'll have the opportunity to go around lions, tigers and leopard safaris within the park. The park spans over 731 hectares, including a zoo, safari and a butterfly park. It has enclosures, varieties of birds, reptiles, Hamadryas baboons brought from Singapore Zoo, and a centre to breed in captivity a few endangered species. It also has a rescue centre for housing wild animals rescued from circuses and other places. There is an elephant weaning centre where mahouts take care of elephant calves separated from their mothers. There are 26 elephants in Banerghatta Biological Park. Hyderabad Metro News now. In Telangana, nearly over 18,000 teachers working in government and local body schools received promotions with the School Education Department, taking up the teachers' transfers and promotions process. As per the Education Department, over 10,000 secondary grade teachers of the government and local body schools in the multi-zone 1 received promotion as school assistants, SAS. Similarly, over 9,900 SGTs of government and local body schools in multi-zone 2 were promoted as SAS. A total of 776 SAs of local body schools in multi-zone 2 and over 1,900 SAs of government local body schools in multi-zone 1 have also been promoted as headmasters. Anakarshita, some news now from other cities.
जी, और अब रुख करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से जुड़ी खबरों का। दिल्ली, पहले शुरू करते हैं दिल्ली की तरफ से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सदन के बाहर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, रामगोपाल यादव, संदीप पाठक, लालजी वर्मा और जावेद अली खान ने तख्तियों द्वारा केन्द्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग का आरोप लगाया। अपनी नारेबाजी के दौरान आपके सांसदों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई की भी मांग की। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने भाषण में केंद्र सरकार की कमियों को भी रेखांकित करना चाहिए था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन DDCD को अस्थायी रूप से भंग कर दिया है। इसके साथ ही श्री सक्सेना ने इसके गैर आधिकारिक मेंबरों को भी हटाने के आदेश दिए हैं। इन सभी आदेशों को तब तक प्रभावी माना जाएगा जब तक नियमों के अनुसार इसके उपाध्यक्ष और मेंबर आदि के रूप में डोमेन एक्सपर्ट की स्क्रीनिंग और चयन के लिए एक तंत्र को विकसित नहीं कर लिया जाता। रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे ने 04075 और 04076 नई दिल्ली से श्रीमाता वैष्णो कटरा तक त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की सेवा की अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की है। इनमें 03575 और 03576 आसनसोल आनंद विहार टर्मिनल, आसनसोल ट्रेन 03413 और 03414 मालदा टाउन नई दिल्ली मालदा टाउन ट्रेन तथा 02391 और 02392 पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना ट्रेन शामिल है। वहीं उत्तर रेलवे ने यह भी सूचित किया है कि गोंडा बुढ़वल खंड की तीसरी लाइन पर नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्य के कारण दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द, परिवर्तित, पुनर्निर्धारित और विनियमित रहेंगी। इनमें 04058 और 04057 आनंद विहार टर्मिनस मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन 05323 और 05324 छपरा आनंद विहार टर्मिनल छपरा ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस तथा 04004 और 04003 नई दिल्ली सीतामढ़ी नई दिल्ली ट्रेन शामिल है। इनके अलावा 15 अन्य ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने कल एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ राजधानी के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। अपने अभियान के माध्यम से एनडीएमसी ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और इसके विकल्प पर बात की। इसके अलावा परिषद ने कूड़े के स्रोत पर निपटारे के महत्व तथा वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण पर जागरूकता के लिए लोगों को उनके साथ चर्चा में शामिल किया। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर कल समाप्त हुआ। नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समापन समारोह में दिल्ली पुलिस ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यातायात प्रबंधन प्रभाग के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के दूत की भूमिका निभाने और अपने माता पिता रिश्तेदारों और सहकर्मी समूहों के बीच सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। और अब रुख करते हैं मुंबई की तरफ। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और इमारतों की छत का उपयोग करके 12.05 मेगावाट सौर संयंत्र चालू किए हैं, जिनमें से 4 मेगावाट सौर संयंत्र पिछले साल लगाए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2023-24 में 4.62 करोड़ रुपए की बचत हुई और 6594.81 मीट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट की बचत हुई। चालू वर्ष में अतिरिक्त 7 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है। मध्य रेलवे की एक अन्य पहल के तहत इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करना है, जो भारतीय रेलवे का पहला ऐसा सोलर प्लांट होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि सरकार को तुरंत किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा करनी चाहिए और चुनाव से पहले इसे लागू करना चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि हर दिन औसतन 9 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अब कोलकाता का रुख करते हैं। पूर्वी रेलवे ने बताया है कि उसके 55% रेल कोच को एलएचबी लिंक के हाफ मैन बुश कोच में बदल दिया गया है। इस तरह के कोच यात्रियों के लिए सुविधाजनक होते हैं और झटकों को कुशलता से रोकते हैं। इस समय पूर्वी रेलवे के पास 2356 एलएचबी कोच और 2079 आईसीएफ कोच हैं। और आकाशवाणी एफएम गोल पर अब वक्त हो चुका है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का।
ओके, वी आर स्टार्टिंग विद चेन्नई। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। एंड बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई, वन आर टू स्पेल्स ऑफ रेन ऑफ थंडर शावर्स। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन द मिनिमम ऑफ 25 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस। एंड टेल अस अबाउट द अदर सिटीज।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
इट इज रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स
अब चलते हैं इतिहास में थोड़ा पीछे और अतीत की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं।
यस, so you want to start? 1846, a saxophone was patented. Belgian musician Adolphe Sax developed the woodwind instrument typically made of brass, which in recent decades has heavily influenced the sound of jazz, military band, rock and pop musical genres. And 1894, Labor Day was made an official U.S. holiday. And friends, in, 1859, the very first dog show was held in Newcastle upon Tyne, England. 1904, that's the year of 1904, author, lecturer and activist Helen Keller, deaf and blind since an illness at just 19 months old, becomes the first deaf and blind person to earn a bachelor's degree from Radcliffe University, Massachusetts. And on this day in 1919, the Treaty of Versailles was signed, officially ending World War I.
और 1999 में रोमानिया ने अपनी वायुसेना में रूसी विमानों की उड़ान पर रोक लगाई और 2003 में इसराइल फिलिस्तीन पश्चिम एशिया में खून खराबा रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमत और 2004 में इराक की राजधानी बगदाद में एक छोटे से समारोह में अमेरिका ने इराक के शासन की बागडोर दोबारा इराकी लोगों को सौंपी वहीं 2005 में रूस द्वारा ईरान के लिए 6 परमाणु रिक्टर बनाने की घोषणा
And I'm going back in time a bit, Akarshita. 1975, India imposes the toughest press censorship since independence. And again, going back in time, in the year 1937, German automobile giant Volkswagen was founded. And in 1981, this day, China opened the road to Kailash and Mansarovar this day. That is way back in 1981.
और 2007 में जाफना के पूर्व प्रधानमंत्री किची मियाजावा का निधन और 2008 में लंदन में एक समारोह में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कुइयां जान के लिए 14वां अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया
ऑलराइट
और अब श्रोताओं समय हो चला है आपको उन शख्सियतों के बारे में जानकारी देने का जो आज ही के दिन इस दुनिया के में आए और इस दुनिया को अलविदा कहा सबसे पहले हम बात करते हैं आज अमर गोस्वामी की आज उनकी पुण्यतिथि है वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा उपन्यासकार थे उन्होंने मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लंबे समय तक काम किया अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया अमर गोस्वामी ने एक प्राध्यापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया महिलाओं की बहुचर्चित पत्रिका मनोरमा में उन्होंने बतौर उप संपादक अपनी सेवाएं प्रदान की उनकी मुख्य रचनाएं हैं इस दौर में हम सफर महुए का पेड़ धरती पुत्र महाबली अपनी अपनी दुनिया कल का भरोसा भूल भुलैया उन्हें केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिमायती कहानी संग्रह पर अहिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है
1712 this day French philosopher writer political theorist Jean-Jacques Rousseau whose treatises and novels inspired the leaders of the French Revolution and the Romantic generation was born in Geneva 1867 also remembering Italian playwright novelist and short story writer Luigi Pirandello recipient of the 1934 Nobel Prize for Literature whose greatest contributions were his plays and 1902 Richard Rogers a prolific composer known for his partnership with lyricist Lawrence Hart Oscar Hammerstein II is born in New York City. Broadway titan wrote 43 legendary American musicals, over 900 songs to his credit. Rogers was one of the most significant American composers whose compositions had a significant impact on popular music. His famous musicals include Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I, and The Sound of Music. First composer to win EGOT, that is Emmy, Grammy, Oscar, and Tony, plus a Pulitzer. The Broadway stage continues to miss this giant of theater and musicals. Here's a tribute to him.
Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Doe. Oh, oh, oh.
Doe!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महाल नोबिस की आज पुण्यतिथि है। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। वे भारत की आजादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने थे। औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि व बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी मदद से कई प्रयोग किए। उनके द्वारा सुझाए गए बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर अमल करते हुए सरकार को इस दिशा में अप्रत्याशित सफलता मिली। उनका सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा शुरू किया गया सैंपल सर्वे है, जिसके आधार पर आज बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत एक निश्चित भूभाग पर होने वाली जूट की फसल के आंकड़ों से की और ये बताया कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार ने 1968 में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर चेन्नवीरा कणवी, अ कन्नड पोएट हेलिंग फ्रॉम धारवाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ही वाज नोन एज अ पोएट ऑफ इमोशंस हू एक्सेल्ड इन कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर कणवी'स फर्स्ट एवर कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल काव्याक्षी वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1949। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क जीवध्वनि पोएट्री 1981। बिसाइड ही रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड, पंपा अवार्ड, नडोजा टाइटल एंड अ फ्यू मोर अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। सैड डे फॉर गिटार प्लेयर्स फ्रेंड्स, किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस Presley's original guitar player Scotty Moore passed away at the age of 84. Moore played on classic rock tracks like Heartbreak Hotel and Jayla's Rock, was the last living member of the team that created the Kings' legendary sound. And Akashita, what about you have a favorite today, no? That is Vishal Dadlani's verse, yes?
जी.
You told me you had a song queued up for him.
आइए आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
All the hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om.
Nice catchy tune for a rainy day. And friends, American pianist organist John Medeski celebrates his birthday today. He is a fusion enthusiast who teamed up with two more like-minded musicologists, drummer Billy Martin and bassist Chris Wood, to form that famous trio of Medeski, Martin and Wood. Here goes.
आज कैप्टन नीके झाकू की पुण्यतिथि है। वे भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी थे जो नागालैंड से थे। कैप्टन नीके झाकू ने करगिल युद्ध के दौरान तोलो लिंग को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने के लिए भेजी गई टुकड़ी का नेतृत्व किया था। सेना अधिकारी कैप्टन नीके झाकू और उनकी टुकड़ी ने 5 दिन तक चली भीषण लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को परास्त कर तोलो लिंग रिज लाइन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था, लेकिन 18 जून 1999 को हुई मोर्टार गोलाबारी में उनकी जान चली गई। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1999 में करगिल युद्ध में ऑपरेशन के दौरान युद्ध में अनुकरणीय वीरता के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
बर्थडे ऑफ शूटर जसपाल राणा, हु मेड न्यू रिकॉर्ड बाय विनिंग 8 गोल्ड इन 1995 कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप। And sharing the day with Jaspal Rana is another sports person, Paralympic high jumper Mariappan Thangavelu, hails from Salem district, Tamil Nadu. He represented India in the 2016 Summer Paralympic Games held in Rio de Janeiro, in the men's high jump T42 category, winning the gold medal in the finals. And also, friends, we have iconic Hollywood actor Mel Brooks turns 98 today. Celebrating birthdays are Kathy Bates, John Cusack and Mary Stuart Masterson.
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का. अनुमति दीजिए आकर्षिता और
सुभद्रा
को और आज सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त करने का. लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात, द हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलोड द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.